आज SBS हिंदी पर हमारे साथ जुड़ी हैं जय श्री सोमैया जी, जो एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं। गाड़ी चलाने के लिए बदलने वाले नियमों के बारे में और भारतीय लोग ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी सीखते वक्त जिन समस्याओं का सामना करते हैं उनके बारे में आज वे हमें जानकारी देंगी। जय श्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए, आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर कैसे बनी?
मैं जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आई 1979 में, मेरी ब्रदर की फैमिली यहाँ रहती थी, उन्होंने बोला कि यहाँ ड्राइविंग इज मस्ट, तो तू ड्राइविंग पहले सीख ले। तो मैंने तब भी आई, ऐसे ही मैंने एक महीने के बाद ड्राइविंग सीखना शुरू कर दिया। जब मेरे दोनों बच्चे स्कूल में जाने लगे तो मुझे लगा मैं सारा दिन क्या करूंगी, कुछ काम करना है लेकिन मुझे पार्ट टाइम काम करना है। तो मैंने सोचा ओके, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर अच्छा रहेगा, मैं अपने वर्क को कंट्रोल कर सकूंगी, वर्किंग आवर्स को कंट्रोल कर सकूंगी, इसलिए मैं उसकी प्रोसेस ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनना शुरू कर दिया।
उसके बाद आपकी खुद की कंपनी आपने कब शुरू की?
मैं 1994 में ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन गई और फिर 1995 में तो मैंने अपना स्कूल शुरू कर दिया, क्योंकि वो मुझे बहुत लॉन्ग आवर्स देते थे, इसलिए फिर मैंने अपनी ड्राइविंग स्कूल शुरू कर दी।
इतने सालों बाद कौन से बड़े बदलाव ड्राइविंग रूल्स में दिखाई देते हैं?
पहला तो जब राउंड अबाउट था तो हम जब लीव राउंड अबाउट में से बाहर निकलते थे तब लेफ्ट इंडिकेटर नहीं था, जो लास्ट 7-8 ईयर से ही आया है कि आप लेफ्ट इंडिकेटर चालू करो जब बाहर निकलते हो तब राउंड अबाउट से, क्योंकि उससे क्या होता है कि सामने वालों को पता चलता है कि हम निकल रहे हैं तो अंदर एंटर कर सकते हैं, और एंड दैट हेल्प्स द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द ट्रैफिक इन द राउंड अबाउट। और ट्रैफिक इतना बढ़ने लगा है तो ये हमें जरूरी है कि कंटिन्यूस चलता रहे, इसलिए ये लेफ्ट इंडिकेटर आया है। जो जो रोड पे स्पीड ज्यादा थी और ट्रैफिक वहां बढ़ गया है तो वो अब उन्होंने कम करने लगे हैं। जैसे 70 किलोमीटर के रोड यहाँ न्यूकासल में थे तो अभी उन्होंने थोड़े साल से मैं देख रही हूँ तो 60 ऐसे कर दिए हैं, और उससे भी कोई ज्यादा ट्रैफिक वाला रोड हो और पेडेस्ट्रियंस एंड ऑल द ट्रैफिक लाइक बहुत गाड़ियाँ, शॉपिंग सेंटर स्ट्रीट्स एंड थी, तो वहाँ भी उन्होंने कम कर दिया है। दूसरा, जैसे पहले ऐसा था कि कोई भी इंटरसेक्शन विदाउट ट्रैफिक लाइट हो तो आप इंटरसेक्शन से 6 मीटर के बाद रोड पे पार्क कर सकते थे, अभी उन्होंने वो 6 मीटर से 10 मीटर कर दिया है कि 10 मीटर के अंदर आप गाड़ी पार्क रोड पे नहीं कर सकते, आपको उससे पीछे करना है। फिर उन्होंने ये भी कर दिया, जैसे पेंटेड आइलैंड के बाद नई लेन्स शुरू होती है लेफ्ट या राइट टर्न के लिए, तो पहले उस पे नहीं चला सकते थे, बट अभी उन्होंने छूट दे दी है कि आप वो पेंटेड आइलैंड सिंगल अनब्रोकन लेन लाइन से कवर्ड हो या उसमें ब्रोकन लेन लाइन से कवर्ड हो वो पेंटेड आइलैंड, देन यू कैन ड्राइव ऑन इट अप टू 50 मीटर्स बिफोर यू एंटर द न्यू टर्निंग लाइन। तो ऐसे कई बदलाव थोड़े थोड़े ऐसे आ गए हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है अभी।
इन बदलने वाले नियमों के साथ साथ आपको सिखाने के तरीकों में कौन से बदलाव लाने पड़े?
लास्ट 3-4 साल से मैंने मेरा यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया, ये इसलिए क्योंकि लास्ट 28 ईयर से मैं सिखा रही हूँ, बिकॉज मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि ये लोग कैसे टेस्ट ले रहे हैं, कैसे ड्राइव करना चाहिए, तो मैंने सोचा यूट्यूब चैनल शुरू करूं और बेसिक जो जिसी ने कभी भी गाड़ी ना सीखी हो ऐसे लोगों को मैं पहले से दिखाऊं कि कैसे गाड़ी चलानी है। बच्चे जब बड़े होते हैं और उनको माँ बाप भी सिखाना चाहते हैं तो मैंने बहुत इजी वे दिखाया है कि आप इस तरह से गाड़ी सिखा भी सकते हो और ये रूल है और इसी तरह हमें फॉलो करना है। जैसे हम लेफ्ट टर्न करते हैं तो हम बहुत फास्ट जाएंगे तो हमारा लेफ्ट टर्न वाइड हो जाएगा तो हम वाइड नहीं कर सकते, तो हम जब राइट टर्न करते हैं तो थोड़ा इंटरसेक्शन में एंटर होने के बाद व्हील्स को टर्न करना है, पहले थोड़ा सीधा एंटर होना है फिर टर्न करना है। जैसे हम इंटरसेक्शन पे आते हैं और व्हील्स को राइट में टर्न कर दे देन वी आर कटिंग द कॉर्नर, और ये सारी आइटम फेल आइटम है, तो वो मैंने बताया है। फिर रिवर्स पार्किंग में क्या क्या ऑब्जर्वेशन करने हैं, ये लोग देखते नहीं है कि आप रिवर्स पार्किंग कैसे करते हो, कौन सी मेथड से करते हो, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन मैंने बोले हैं कि आपने 30 मीटर्स पहले इंडिकेट करना है, स्लो होना है, फिर ब्लाइंड स्पॉट देखना है, फिर पैरेलल आना है पार्क गाड़ी के पास और ओनली विद इन 1 मीटर, 1.5 to 1 मीटर के अंदर ही आना है उसके पास, और फिर आगे रिवर्स में डालने के बाद आगे पीछे देखो, राइट ब्लाइंड स्पॉट भी देखना है, और फिर पीछे देख के, पीछे के विंडो में से देख के रिवर्स करना है, मिरर या कैमरा में देख के नहीं करना है। थोड़ी आप उसकी हेल्प लो तो चलता है, पर मेन ऑब्जर्वेशन थ्रू द बैक विंडो, वो ये सब यही छोटी छोटी बातें देखते हैं टेस्ट में। तो मैंने सोचा ये सब बता दूं तो एटलीस्ट पीपल कैन रिफर इट एंड गो फॉर द टेस्ट एंड पास द टेस्ट एंड ऑल्सो लर्न ड्राइविंग दैट वे टू।
भारतीय फुल लाइसेंस पाने वाले व्यक्ति यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कितने समय तक ड्राइविंग कर सकते हैं?
अच्छा, वो यहाँ परमानेंट रेजिडेंट हो जाए बाद में, विद इन 3 मंथ्स उनको ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस लेना पड़ता है। न्यू साउथ वेल्स में ये रूल है, परमानेंट रेजिडेंट ना हो, ओवरसीज से आए हैं और उनको कोई कारण ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस चाहिए, तो वो लोग ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स का लाइसेंस ले सकते हैं, पर उनको नॉलेज टेस्ट एंड हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट देनी है। ये तीनों टेस्ट पास करने के बाद उनको इक्विवेलेंट ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस मिल सकता है।
भारतीय लोगों को यहाँ आने के बाद ड्राइविंग सीखते वक्त कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
वो लोग गाड़ी तो बहुत कंट्रोल से चला सकते हैं और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मेनली उनको रूल्स नहीं पता होते हैं, इसलिए वो फेल होते रहते हैं। वो जानने के बाद जब वो टेस्ट में जाते हैं तो इजीली पास हो जाते हैं।
काफी लोग, खासकर महिलाएं जो यहाँ गाड़ी नहीं चलाती हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
उससे वही कहूंगी कि उन्हें ट्राई करना ही चाहिए, लेसन लेने चाहिए, और एक एक टॉपिक को पढ़ो, बरोबर समझो, फिर लेसन लेने जाओ, तो आप जल्दी सीखोगे। वो समझ के गए हो तो आप जल्दी सीख पाओगे, आपको नर्वसनेस कम हो जाएगी और समझ में भी जल्दी आएगा कि कितना इजी है ड्राइविंग, इतना डिफिकल्ट नहीं है, और रूल्स बरोबर समझो तो इजी हो जाएगा। कई बार मैंने देखा है कई लर्नर मिसअंडरस्टैंड अस द ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, कि भाई हम समझाते हैं तो कई बार इतनी नर्वस होते हैं कि उनको दिमाग में कोई नहीं जाता है, कुछ नहीं जाता है। तो मैं उनको साइड पे खड़े रख के ड्रॉ करके सब दिखाती हूँ कि इस तरह मैं कहती हूँ कि ऐसे लेके आइए, ऐसे करो और शांति से करो, धीरे धीरे चलाओ, नो प्रॉब्लम, बट स्टेप बाय स्टेप सही करो। और टेस्ट में भी कई लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि हमें 60 किलोमीटर की स्पीड हो तो मुझे वही रोड पे 60 पे ही जाना है ना। दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दे हैव इट इन देयर माइंड। आपको 60 पे नहीं जाना है, आपको दे से यू कैन गो बिटवीन 40 एंड 60 किलोमीटर। वो 20 किलोमीटर का विंडो देते हैं, उसके बीच में आप चलाओ, बट जब रोड खाली होते हैं तब इतना स्लो नहीं जाना, आप 50-55 पे जाओ। ऐसी टेस्ट में जाने के लिए ऐसी तैयारी करो कि आप वो स्पीड लिमिट पे जा सको, तब भी आपका ब्रेन कंट्रोल में रहे, आप सारी स्कैनिंग चारों बाजू का कर सको और सोच सको कि 50-100 मीटर के बाद मुझे क्या एक्शन लेना पड़ेगा, वो आप डिसीजन ले सको, वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सको। यही आपकी टेस्ट है कि हाउ वेल यू आर स्कैनिंग योर ट्रैफिक अराउंड यू एंड अहेड ऑफ यू, एंड वॉट डिसीजन आर यू टेकिंग दैट एट 100 और 50 मीटर्स डाउन द रोड, वॉट काइंड ऑफ सिचुएशन आई बी कमिंग टू एंड हाउ विल आई हैंडल दैट, वॉट डिसीजन यू आर मेकिंग इट एंड हाउ डू यू पुट इट इन टू योर एक्शंस, वही आपकी टेस्ट है। वो नहीं देखते हाउ फास्ट आप जा रहे हो, गिव वे साइन पे आओ तो ऐसे नहीं, मैंने सुपरफिशियल देखा जो मेन रोड से आ रही है वो गाड़ियों को और मैं निकल गई, नहीं, शांति से आओ, थोड़े धीरे धीरे बाहर आते जाओ, इंटरसेक्शन में पूरा देखो, बरोबर दिखे तभी आप एक्सलरेट करके सामने निकलो या टर्न करो, जिसको वे देना हो दो।
जयश्री जी, आपने आपका समय हमारे लिए निकाला, इतनी अच्छी बातचीत हमारे साथ की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद प्रियंका जी।